बताई है। इस नफ्स से मुतालिक जो बातें आप बड़ों ने बताई है वो आपके सामने पेश की जा रही है। इस नफ्स से मुतालिक पहली बात जो हमने अर्ज की वो ये कि नफ्स की इस्लाह जो है वो बहुत देर से होती है। सालिक जब शेख की खिदमत में आता है तो उसको सबसे पहले तस्फिया कल्ब नसीब होता है, दिल की सफाई नसीब होती है, जो कि निस्बतन आसान और निस्बतन जल्दी होती है। और कल्ब की सफाई क्या है कि इबादत में रग़बत आती है और इंसान गुनाहों को छोड़ देता है। मगर नफ्स की इस्लाह ये एक लंबा काम है, और नफ्स की इस्लाह ये है कि इंसान अपने बातनी अमराज छुपे हुए गुनाहों को छोड़ दे। मिसाल के तौर पे तकब्बुर एक छुपा हुआ गुनाह है, ये आंखों से नजर आता नहीं है, ये दिल के अंदर का जज्बा है। शहवत एक छुपा हुआ गुनाह, कीना एक छुपा हुआ गुनाह, रिया एक छुपा हुआ गुनाह है, हसद एक छुपा हुआ गुनाह है। ये सब जज्बात हैं, और ये सिर्फ जज्बात नहीं, ये इतने बड़े गुनाह हैं कि शायद जाहिरी गुनाहों से भी ये बहुत ज्यादा बड़े गुनाह। तो पहली बात हमने ये की कि तस्फिया कल्ब, दिल की सफाई जो है वो आसान, वो जल्दी नसीब होती है उस शख्स को जिसने नियत की है कि मैं अपनी इस्लाह करना चाहता हूँ, जो शेख के पास आता है। मगर बातनी अमराज का दिल से पूरी तरह से निकल जाना ये एक लंबा काम है। दूसरी बात कल की मजलिस में हमने अर्ज की, और वो ये कि नफ्स जो कि इंसान का दुश्मन है, गुनाहों की तरफ उकसाता है, उसका तरीका वारदात इंसान पर अलग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसके मुकाबले में शैतान का तरीका वारदात वो कमजोर है। इस हवाले से अकाबरीन से मनकूल ये बात आपके सामने रखी गई कि शैतान जो है वो एक ही गुनाह पे खूब इसरार नहीं करता, बल्कि गुनाह से आपको रोकने की कोशिश करता है। इंसान थोड़ी हिम्मत कर लेता है तो शैतान पीछे हट जाता है, दूसरे गुनाह की तरफ चले जाता है कि चलो ये नहीं किया ना, अब ये कर लो। वो भी छोड़ देता है, वो कहता है अच्छा ये नहीं किया तो ये कर लो। तो शैतान छोड़ता नहीं है इंसान को, मगर शैतान किसी एक गुनाह पे जोरदार तरीके से इसरार नहीं करता। इसकी मिसाल यूं समझे कि शैतान कोशिश तो करेगा कि आप नमाज पे ना जाएं, तो पहली कोशिश ये होगी कि आप मस्जिद ना जाएं। मगर अगर आप मस्जिद पहुंच गए तो शैतान फिर कोशिश करेगा कि जी आप नमाज जो है ना वो देर से पहुंच जाए, जल्दी ना पहुंचे। ये भी आपने शैतान को अगर हरा दिया और आप जल्दी भी पहुंच गए और मस्जिद भी पहुंच गए, तो अब उसकी कोशिश होगी ठीक है चलो ये नहीं किया, तो नमाज के अंदर उसकी तवज्जो इधर उधर हो जाए। नमाज के अंदर तवज्जो अगर इधर उधर ना हो सकी और हमने कहा नहीं शैतान को मैंने आज जीतने नहीं देना, तो उसकी कोशिश होगी कि अच्छा नमाज उसने पढ़ ली, अब सुन्नतें ना पढ़े, उसके दिमाग में खूब वसवसे डालेगा कि तुम्हारे बड़े काम है। इंसान फिर भी अपने आप को मनाएगा कि नहीं मैंने सुन्नतें अदा करके जानी है, तो शैतान उसको फिर उकसाएगा कि जी अगर इमाम साहब कुछ नेकी की बात कर रहे हैं तो उकसाएगा कि नहीं ये सुननी नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास कुछ और काम जरूरी है। तो इस तरतीब पर शैतान का जो दाव है वो जोरदार इस लिहाज से नहीं कि एक गुनाह की वो दावत देगा, इंसान उसको कबूल नहीं करेगा तो फिर दूसरे गुनाह की दावत, दूसरा नहीं तो कहेगा चलो तीसरी गलती कर लो, तीसरी नहीं तो कहेगा चलो चौथी कर लो, चलता रहेगा साथ साथ, छोड़ेगा नहीं। حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے. تو شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے, اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کمزور کہا, ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا جو مکر ہے, شیطان کا جو حملہ ہے کمزور, مگر اس کے مقابلے میں نفس کا جو حملہ ہے وہ زوردار ہوتا ہے. نفس جب فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو فلاں گناہ کروانا ہے, تو وہ کروا کے ہی رہتا ہے, بار بار اسی گناہ کی طرف توجہ دلوائے گا, حتیٰ کہ وہ شخص اس گناہ کا مرتکب ہو جائے گا. اسی لیے کل کی مجلس میں ہم نے یہ عرض کیا کہ کئی مرتبہ انسان ظاہری طور پہ بہت نیکی کے کام بھی کر رہا ہے, نیکی والی عبادتیں کر رہا ہے, مشائخ کے بتائے ہوئے معمولات بھی کر رہا ہے, مگر اس کے نفس کے اندر جس چیز کی ایک طلب اور جس چیز کی ایک کمزوری آ گئی ہے, جب اس گناہ کا معاملہ آتا ہے تو وہ نفس اس سے وہ گناہ کروا ہی لیتا ہے. کل کی مجلس میں ہم نے ایک صاحب کی مثال دی کہ نیکی اتنی کہ بینک والوں نے اکاؤنٹ میں 17 لاکھ روپے ڈالے تو انہوں نے وہ واپس کر دیے, 25-30-40 ہزار روپے کمانے والے صاحب. کہا یہ 17 میرے نہیں ہے, بلکہ بینک والوں کو تنبیہ کی کہ آپ کا سسٹم کمزور ہے. تو بہت ساری اچھی باتیں اور نیکی کی باتیں ان کے اندر موجود, مگر اس سب کے باوجود زنا کے مرتکب ہوتے تھے. کہ نفس کے اندر یہ گناہ جو ہے وہ پیوست ہو چکا تھا. جب زنا کا معاملہ آتا تو کوئی چیز ان کو کوئی نصیحت کام نہیں کرتی. کل کی مجلس میں ہم نے عرض کیا کہ اس کی ایک اور مثال بھی, اور یہ آج اس وقتاً فوقتاً یہ مثال دیتا ہے کہ کراچی کے ایک بہت نیک تاجر ہے, اور بڑے تاجر, وہ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں کہ جی لوگوں میں تو مشہور میں نیک آدمی تھا, چہرے پہ داڑھی بھی تھی, سر پہ ٹوپی بھی, اس آج اس کے جاننے والے قریب ہی, دور کے رشتہ دار بھی شاید ہوتے ہیں, علماء سے محبت بھی رکھتے تھے, مسجد میں آنا جانا بھی خوب, ہر سال 2-3 مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت ہوتی تھی ان کی, اس سے بھی زیادہ کئی مرتبہ, 3-4 مرتبہ بھی چلے جاتے, اللہ نے مال پیسہ دیا تھا, حج عمرے کرنے کا شوق بھی تھا, اب نیکی ایسی تھی. ایک مرتبہ مسجد میں اتنا وقت, افطار کئی مرتبہ رمضان میں مسجد میں کرتے تھے کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ پابندی سے ہو جائے, مسجد میں امام صاحب نے دعوت کی تھی, اس آج اس کو بھی بلایا تھا, اور یہ ہمارے جو جاننے والے یہ کاروباری جو جن صاحب کی بات کر رہا ہوں وہ بھی تشریف لائے تھے. تو مسجد میں امام صاحب نے مختلف کھانے ہم سب کے لیے رکھے تھے افطار پہ, تو بس ویسے ہی تعریف کر دی, ایک جلیبی تھی یا کوئی ایسی چیز تھی اس کی تعریف کی کہ جی بڑے اچھا ہے, امام صاحب کو اس عاجز نے کہا کہ جی بہت آپ نے زبردست کھانے لگائے اور یہ جلیبی تو مجھے بڑی پسند آئی. تو اگلے دن یا اس سے اگلے دن یہ گھر پہ وہ جلیبیاں لے کے آ گئے کہ جی آپ نے کہا تھا کہ آپ کو بڑی پسند آئی ہے تو میں لے کے آیا. تو نیکی اس طرح کی تھی ان کی, مسجد میں آنا جانا, نماز کا اہتمام خوب, حرمین شریفین کی زیارت خوب, چہرے پہ سنت بھی ہے, मगर जहां शराब का मामला आता आउट ऑफ कंट्रोल। फरमाते थे कि बस ये मेरी कमजोरी है। और कई मर्तबा पूरी पूरी रात शराब पीते हुए गुजर जाते हैं। अल्लाह हु अकबर। बल्कि कई मर्तबा ऐसा भी हुआ, बल्कि एक मर्तबा ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि जिस सुबह सुबह पूरी फैमिली की फ्लाइट थी उम्रे के लिए, जिस सुबह उम्रे की फ्लाइट थी उस रात पूरी रात शराब पीते हुए गुजारी। फिर आखिर को तौबा कर ली। अल्लाह ताला ने फिर जिंदगी के आखिरी 20-25 साल जो है इस गुनाह से उनको महफूज फरमाया। मगर इस बात से ये पता चलता है कि नफ्स का तरीका है वारदात ऐसा है, आप कितने ही नेक क्यों ना हो और कितनी नेकी क्यों ना कर रहे हो, हज उमरों पे भी जा रहे हो, नमाजें भी पढ़ रहे हो, मस्जिद में आना जाना भी है, उलमा की खिदमत भी है, इमाम साहब से मोहब्बत है, नसीहत भी सुन रहे हैं, मगर जब ये मामला आता है नफ्स की ख्वाहिश का कोई चीज रोक ही नहीं सकती। तो यहां से ये बात प्रूफ हो गई कि शैतान के हमले कमजोर हैं। इंसान थोड़ी सी हिम्मत करता है, शैतान पीछे हट जाता है, एक दूसरे किसी गुनाह की तरफ लगा देता है। नफ्स का हमला जोरदार है। नफ्स ने ये देखना ही नहीं है कि ये बहुत नेक आदमी है, कि यार कम से कम इससे तो ये गुनाह ना करवाऊं। नफ्स ने ये देखना ही नहीं है इसकी बड़ी इबादतें हैं, इसका नाम क्या है लोगों में। तो अपनी नेकी के बावजूद जो उसके नफ्स के अंदर जो एक ख्वाहिश है, वो उस ख्वाहिश को नफ्स पूरा करवाएगा। तो इसलिए नफ्स का जो हमला है वो जोरदार है। और इसलिए कई मर्तबा तारीख इस्लाम में नेक लोगों का तذکرہ आया, जो मशहूर नेक लोग थे, मतलब उनसे बड़ा गुनाह हो गया ऐसा जो आम नौ आम इंसानों से नहीं होता। और वो इसीलिए कि नफ्स का हमला जो है वो जोरदार है। तो कल की मजलिस में हमने अर्ज किया कि शैतान के हमले कमजोर अकाबरीन के नजदीक, उस हवाले से कुरान पाक की एक आयत भी बयान की गई, मगर नफ्स का हमला जो है वो बहुत ज्यादा तेज और बहुत ही ज्यादा जोरदार, बचना नेकों के लिए भी मुश्किल है। इस हवाले से एक तीसरी बात नफ्स से मुताल्लिक जो बड़ों ने फरमाई वो आपके सामने रख दी जाएगी, फिर इसके तशरीह इंशाअल्लाह कल की मजलिस में, कि मशायख ने फरमाया कि जो शख्स अपने नफ्स को पहचान लेता है ना, अपने नफ्स की शरारतों को, उसके हमलों को, ये पहचानने वाला भी बहुत बड़ा अल्लाह वाला हो गया। इंसान का हाल तो ये है कि वो अपने नफ्स की ख्वाहिशात से पूरी तरह वाकिफ भी नहीं, उसको तस्लीम भी नहीं करता। तो मशायख की एक मशहूर इबारत है इस नफ्स से मुतालिक, मन अरफ नफ्सहु अरफ रब्बहु, जिसने अपने नफ्स की मार्फत हासिल कर ली, जिसने अपनी नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो अल्लाह वाला बनने के लिए नफ्स की सारी ख्वाहिशात खत्म हो जाएं, मर जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। नफ्स की ख्वाहिशात को पहचान लेना ये भी बड़ा कमाल है। तो इंशाल्लाह कल की मजलिस में इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हमें इस नफ्स के दाव पेच समझने की, इस नफ्स के हमलों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
وعليكم
ورحمة الله
السلام
وبركاته.
ورحمة الله.
وعليكم